अभिमन्यु इशिका को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो लॉयर को लेकर तुरंत पहुंचा। उसके साथ में दिशांक भी था, जो इशिका की बीमारी की वजह से परेशान था। उसने अभिमन्यु को बताया कि इशिका को सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसके चलते अगर उसने आयरन इन्फ्यूजन नहीं लिया तो उसकी जान तक जा सकती है। इशिका को इन्फ्यूजन कर लेना था और आज ये सब हो गया था। अभिमन्यु अपनी तरफ से थोड़ा बेफिक्र था, क्योंकि वो काफी अच्छे लॉयर को लेकर आया था। अभिमन्यु और दिशांक बात कर रहे थे, तभी लॉयर उनके पास आया और धीमी आवाज में बोला, आई एम रियली सॉरी मिस्टर राजवंश, फिलहाल मिस सिंघानिया की जमानत नहीं हो पाएगी क्योंकि रात होने को आई है और इस वक्त हम पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे, हमें कल तक का वेट करना होगा। अभिमन्यु ने परेशान चेहरे के साथ दिशांक की तरफ देखा। थोड़ी देर पहले दिशांक ने इशिका की जिस बीमारी के बारे में बताया था, उसके हिसाब से इशिका को इन्फ्यूजन लेना जरूरी था। दिशांक ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाया और कहा, डोंट वरी, हम कल तक का वेट कर सकते हैं। मैम हमेशा दो दिन पहले इन्फ्यूजन लेती है, तो इस हिसाब से हमारे पास परसों तक का टाइम है। परसों के अगले दिन भी इन्फ्यूजन लिया जा सकता है। अभिमन्यु ने राहत की सांस ली कि इशिका के पास इन्फ्यूजन के लिए टाइम है। फिलहाल के वक्त उन्हें इशिका से मिलने भी नहीं दिया गया, इसलिए वो वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन रूम में माधव और क्रिस्टल आमने सामने थे। माधव के हिसाब से इशिका कोई बेफिजूल की बीमारी का बहाना बनाकर जमानत ले लेगी, लेकिन क्रिस्टल को इशिका पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा नहीं करेगी। क्रिस्टल के विश्वास को देखकर माधव ने सख्ती से कहा, ओके मिस्टी सेजा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ऐसा कीजिए कि उनके बेल के लिए जो भी पेपर सबमिट हुए हैं उन्हें यहाँ लेकर आइए। क्रिस्टल और माधव इन्वेस्टिगेशन रूम से दूसरे कमरे में आ चुके थे। माधव के ऑर्डर देने पर क्रिस्टल बाहर गई और वो पेपर्स लेकर आई। माधव ने उसे पेपर्स पढ़ने को कहा, लेकिन पहले क्रिस्टल ने उन्हें अपने मन में पढ़ा। जमानत देने के लिए कारण लिखा गया था, इशिका को सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसके चलते उसे आयरन इन्फ्यूजन लेना जरूरी है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। उसे देखने के बाद क्रिस्टल के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। माधव ने क्रिस्टल के हाथ से पेपर लिए और उन्हें देखा तो वो हंसने लगा। माधव ने क्रिस्टल का मजाक बनाते हुए कहा, देखा अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्त पर हंसी आ रही है। कम से कम किसी अच्छी बीमारी का बहाना बनाती तो दिखने में थोड़ा इम्प्रेसिव लगता। सीरियसली, आयरन डेफिशिएंसी? मैंने कहा था ना डॉक्टर डिसूजा, तुम बहुत भोली हो, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। क्रिस्टल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो। कुछ देर पहले वो इशिका को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन बेल एप्लीकेशन देखकर उसे इशिका पर गुस्सा आने लगा। क्रिस्टल की हालत देखकर माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो एक वक्त में तुम्हारी दोस्त रह चुकी है। मैंने उसके साथ में थोड़ी सख्ती दिखाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे बहाने बनाने का मौका मिले। केस बिल्कुल साफ है, जानता हूं कि उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा और उसे नहीं पता होगा कि वहां कोई स्टील की रॉड रखी हुई होगी, लेकिन अनजाने में ही सही हत्या उसी के हाथ से हुई है। तुमने इस पेशे में ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि लोग कैसे कैसे बहाने बनाकर जेल से बचने का सोचते हैं। अभी समझा रहा हूं कि सोच समझ कर काम करो। तुमने आज रूल तोड़े हैं, तुम अच्छे से जानती हो कि रात के वक्त पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी तुमने किया। मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आगे से तुमने ऐसी हरकत की तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये अपनी यूनिफॉर्म फिर से पहनने का मौका मिलेगा। क्रिस्टल को समझाते हुए माधव ने अच्छा खासा भाषण दे दिया था। क्रिस्टल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और इशिका के पास इन्वेस्टिगेशन रूम में गई। उसने इशिका को पानी दिया। इतनी देर अंधेरे में रहने के बाद इशिका की आंखें थोड़ा बेहतर हो गई थी। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और इशिका से कहा, तुम यहां जब से आई हो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना इशिका सिंघानिया? मुझे तुम पर यकीन है, इशिका ने जवाब में कहा। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बेल लेने के लिए तुमने बीमारी का बहाना बनाया। एनीमिया जैसी बीमारी पर किसी को बेल नहीं मिलती है। हम आसानी से प्रूफ कर देंगे कि तुम झूठ बोल रही हो, क्रिस्टल ने गुस्से में अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहा। क्रिस्टल के कहने पर इशिका को याद आया कि ये उसके आयरन इन्फ्यूजन का टाइम था, अक्सर दिशांक ही उसके लिए याद रखना था। इशिका ने धीमी आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में आयरन डिफिशेंसी है। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, क्रिस्टल ने चिल्लाकर कहा और फिर अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन और छोटी कांच की बोतल निकाली। उसने तुरंत इशिका का ब्लड सैंपल लिया। इतने गुस्से में भी इशिका का ब्लड लेने के बाद क्रिस्टल ने उसकी नीडल लगने वाली जगह पर अल्कोहल लगाना नहीं भूली। क्रिस्टल ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं चेक करने जा रही हूँ, उम्मीद है कि इस बार तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है। लेकिन मैं, इशिका ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल इतना जल्दी में थी कि वो उसकी बात पूरी सुने बिना ही चली गई। इशिका को बाहर से क्रिस्टल की आवाज़ सुनाई थी। उसने इंस्पेक्टर माधव से कहा, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम उसके साथ सख्ती नहीं करेंगे। आप उसके साथ पूरी रात पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आप लाइट नहीं जलाएंगे। ठीक है, हमारी भोली डॉक्टर डिसूजा के लिए कुछ भी करेंगे, माधव ने सिर हिलाकर कहा। अंदर इशिका ने यह सब सुनकर आह भरी। वहीं इशिका की बीमारी को साबित करने के लिए क्रिस्टल तुरंत लैब में आ गई थी। क्रिस्टल ने ब्लड सैंपल को मशीन में डाला और फिर इंतजार करने लगी। उसे लगभग 20 मिनट का इंतजार करना था, फिर उसके बाद रिपोर्ट आने वाली थी। क्रिस्टल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पास एक कॉल आया। कॉल पर किसी ने कहा, डॉक्टर क्रिस्टल डिसूजा, हमें पता चला है कि आज आप यहीं पर हैं। डिटेंशन सेंटर में किसी की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज आप आकर चेक कर लेंगी? ठीक है, मैं आ रही हूँ, क्रिस्टल ने जवाब दिया और तुरंत वहाँ जाने के लिए चल पड़ी। हालांकि फॉरेंसिक डॉक्टर और नॉर्मल डॉक्टर अलग होते थे, लेकिन वो छोटी मोटी बीमारियों को पहचान कर उसे हिसाब से इलाज कर सकती थी। थोड़ी देर में क्रिस्टल वहाँ पहुँच गई थी। इस जगह पर उन सस्पेक्ट को रखा जाता था जिनके केस अभी कोर्ट में चल रहे थे। एक ही सेल में काफी सारे सस्पेक्ट को रखा गया था। वहाँ आने से पहले क्रिस्टल ने तुरंत ही अपने मास्क और ग्लव्स पहन लिए थे। अंदर जाकर उसने गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाया तो गार्ड ने एक औरत की तरफ इशारा करके कहा, इसे देखना है? हाँ प्लीज, मुझे जल्दी से चेक करो, उस औरत ने क्रिस्टल को देखते ही कहा। क्रिस्टल को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक लगभग 42 साल के आसपास की औरत ने कैदियों की यूनिफॉर्म पहनी थी और अपने पेट को पकड़ रखा था। वो मालविका थी, इशिका की माँ। मालविका ने अपने पेट को पकड़कर कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो वरना मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। क्रिस्टल ने उसे देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि मालविका एक दो बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई थी। क्रिस्टल उसे जाकर चेक करने लगी, लेकिन मालविका ने उसे चेक नहीं करने दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे एक अलग कमरा प्रोवाइड करवा दो, मेरे रोने की आवाज से इन सब लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मैं देखती हूँ, क्रिस्टल ने जवाब दिया। क्रिस्टल उठकर वहां से जाती, उससे पहले वहां मौजूद बाकी कैदियों ने मालविका की नकल करनी शुरू कर दी। वो सब अपना पेट पकड़कर बैठ गईं और कहने लगी कि हमारे भी दर्द हो रहा है, हमें भी अलग कमरा दे दो।
क्रिस्टल कंफ्यूज हो गई थी। वो मालविका से कुछ पूछ पाती उससे पहले एक औरत ने कहा, हम सब वही खाना खा रहे हैं जो तुम खा रही हो, तुम्हें अलग कमरा चाहिए इसीलिए तुम बहाने बना रही हो, हम तुम जैसी औरत को अच्छे से जानते हैं, घटिया कहीं की। क्रिस्टल समझ गई थी कि आखिर वहां क्या चल रहा था। उसने मालविका की तरफ देखा तो उसने अभी भी अपना पेट पकड़ रखा था। क्रिस्टल ने उससे सख्ती से कहा, अगर आपके पेट में सच में दर्द है तो हम हॉस्पिटल जाकर आपके टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो झूठ बोलने के आरोप में आपको कुछ दिनों के लिए और जेल में रहना पड़ेगा। मालविका अपनी ही बातों के जाल में फंस गई थी। वो उन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती थी। वो रात को सोते वक्त अजीब आवाजें निकालती थी, कुछ खर्राटे लेती थी तो कुछ गंदी गैस छोड़ती थी। मालविका ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे अकेले रहने का कमरा मिले और वो आराम से रह सके, लेकिन वो पकड़ी गई थी। पूरा मामला समझकर क्रिस्टल बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। एक महिला कैदी मालविका के पास गई और सर हिलाकर बोली, तुम एक घटिया औरत हो जिसे झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। लगता है तुम अभी मेरी बेटी से नहीं मिली, वो मुझसे भी माहिर है, इतना झूठ बोलती है और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि कोई भी आसानी से उसके ड्रामे में आ जाए। आज मैं उसी की वजह से इस हालत में हूँ, देखना वो भी इसी तरह एक दिन तकलीफ में रहेगी। मालविका गुस्से में इशिका को भला बुरा कहने लगी, लेकिन उसकी बातों ने क्रिस्टल पर गहरा असर किया। क्रिस्टल वापस ऊपर आ गई थी। उसने आकर रिपोर्ट चेक की तो देखा कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी और इशिका एनीमिक नहीं थी। रिपोर्ट नॉर्मल देखकर क्रिस्टल को इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत इशिका के पास पहुंची और रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, तुम झूठी हो इशिका सिंघानिया, बार बार मेरे इमोशंस के साथ खेलकर क्या मिलता है तुम्हें। इशिका ने रिपोर्ट को देखा और फिर क्रिस्टल से कहा, मैं अभी अनीमिक नहीं हूं, लेकिन एक दो दिन बाद हो जाऊंगी। क्रिस्टल को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। पहली बार इशिका की बात क्रिस्टल ने ठीक से नहीं सुनी थी। उसकी बीमारी थोड़ी अजीब थी। जब भी उसे पीरियड्स आते थे तब उसकी बॉडी आयरन कंज्यूम करना बंद कर देती थी। बिना पीरियड्स के वो आयरन टैबलेट्स के साथ खुद को मेंटेन करके रखती थी, लेकिन पीरियड्स आने के बाद उसे आयरन इन्फ्यूजन लेना पड़ता था। कई सारे हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के बाद उसे पता चला कि उसकी ये अजीब बीमारी जेनेटिक है, जो शायद उसकी किसी दादी या नानी से उसे मिली होगी। इशिका ने अपनी बीमारी के बारे में क्रिस्टल को समझाया तो क्रिस्टल ने हंसकर कहा, तुम मुझे जेनेटिकल बीमारी का बोलकर बेवकूफ बना रही हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इशिका, झूठ बोलना बंद करो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, इशिका ने सख्ती से कहा। तुम बोल रही हो, मैंने भी मेडिकल साइंस पढ़ा है, लेकिन वहां तो इस तरह की किसी बीमारी के बारे में नहीं लिखा हुआ था, ये झूठ नहीं तो और क्या है, क्रिस्टल ने गुस्से में जवाब दिया। इशिका को समझ नहीं आया कि वो क्रिस्टल को कैसे यकीन दिलाए, क्योंकि उसकी बीमारी सच में अजीब थी। वो चाहकर भी उसे समझा नहीं पा रही थी। इस बीच इंस्पेक्टर माधव वहां पर आए। उन्होंने क्रिस्टल से कहा, ये इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाली है, इसे इसकी सेल में वापस छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे कांस्टेबल्स की नींद खराब हो रही है, हम कल फिर से पूछताछ करेंगे। आप जाइए, मैं इसके पास रुकती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि ये सच कैसे नहीं बोलती है, क्रिस्टल ने गुस्से में कहा। इंस्पेक्टर माधव ने उसे समझाना चाहा, लेकिन क्रिस्टल अपनी जिद पर खड़ी हुई थी। आखिर में हार मानते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है फिर हम जा रहे हैं, अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो प्लीज कॉल करना। उन सब के जाने के बाद क्रिस्टल इशिका के सामने बैठी और थोड़ा नरमी से बोली, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम खुद को बेगुनाह साबित करोगी, ना कि इस तरह बेल के लिए अप्लाई करके यहाँ से भागने की सोचोगी। तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो ना, ताकि मैं तुम्हारे लिए गवाही दूँ और तुम्हें बेगुनाह साबित करूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और सबूत अपने आप मिल जाएंगे। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं झूठ बोलकर भाग रही हूँ तो ठीक है, मैं बेल के लिए मना कर दूंगी। फिर दो दिन बाद में जब मैं बीमार पड़ूंगी तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा, इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। वैसे भी वो परेशान थी, ऊपर से जिस तरह से उसके साथ ये सब हो रहा था इशिका के लिए झेलना मुश्किल था। तुम्हारी ये बीमारी का बहाना बनाने से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी इशिका, क्रिस्टल ने नम आंखों से कहा। दोनों पूरी रात जागकर ऐसे ही सवाल जवाब करती रहीं। आखिर में क्रिस्टल ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन पूरी रात नहीं सोने की वजह से और ज्यादा थकने की वजह से इशिका की तबीयत खराब होने लगी थी। उसके पीरियड्स आने वाले थे, इस वजह से उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार उसके पीरियड्स उसके रेगुलर डेट से पहले आने वाले थे, और ये वो अपनी बॉडी में हो रही कमी से महसूस कर सकती थी। सुबह के करीब क्रिस्टल की कुछ पल के लिए आंख लग गई थी। जब वो उठी और उसने इशिका का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। इशिका का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगा था। क्रिस्टल बुरी तरह घबरा गई। वो इशिका को उठाते हुए बोली, इशिका, इशिका, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ उठो,